एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम किताबों की दुनिया के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, बेस्ट सेलर्स।
हाँ, बेस्ट सेलर्स वो किताबें जो हर दुकान में सामने दिखती हैं, जिनके बारे में सब बात कर रहे होते हैं। मन में सवाल तो आता है कि भाई ये होता कैसे है?
बिल्कुल।
क्या ये बस किस्मत है कि कोई किताब आई और रातों रात हिट हो गई, या फिर इसके पीछे कोई सिस्टम है?
और यही सवाल हैं जिनका जवाब जॉन सदरलैंड अपनी किताब बेस्ट सेलर्स में ढूंढते हैं।
और देखिए, आज के जमाने में जहां हर रोज हजारों किताबें छप रही हैं, इतना ऑनलाइन कंटेंट है, ये समझना तो और भी जरूरी हो गया है कि कुछ ही किताबें क्यों इतनी ऊपर उठ जाती हैं।
सही कहा, क्यों वो सिर्फ किताबें ना रह के एक तरह की कल्चरल घटना बन जाती हैं।
और इस पहेली को समझने के लिए जॉन सदरलैंड मेरे ख्याल से परफेक्ट इंसान है। वो कोई आम लेखक नहीं है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के एमेरिटस प्रोफेसर हैं, मतलब साहित्य जगत के जाने माने नाम।
पर उनकी सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो सिर्फ गंभीर अकादमिक साहित्य में ही नहीं खोए रहते।
अच्छा।
हाँ, वो लोकप्रिय किताबों में भी उतनी ही गहरी रुचि लेते हैं, जिन्हें अक्सर अकादमिक दुनिया थोड़ा कम करके आंकती है।
मतलब वो ये नहीं सोचते कि अरे ये तो पॉपुलर किताब है, इसमें क्या दम होगा?
बिल्कुल नहीं, वो उनमें भी वही गहराई वही विश्लेषण लाते हैं जो किसी क्लासिक में लाते। वो पूछते हैं, अच्छा ये इतनी क्यों बिकी, क्या है इसमें जो लोगों को खींच रहा है?
ये नजरिया ही उन्हें बेस्ट सेलर्स लिखने के लिए एकदम सही बनाता है। वो एक तरह से पुल बनाते हैं अकेडमिक दुनिया और पॉप कल्चर के बीच।
सही कहा, वो लिटरेचर की हिस्ट्री भी समझते हैं और आज की पब्लिशिंग इंडस्ट्री के दांव पेज भी।
हाँ, वो सिर्फ कहानी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि कहानी लोगों तक पहुंची कैसे, एक प्रोडक्ट कैसे बनी, समाज पर असर क्या हुआ।
और कमाल की बात यह है कि इतने गहरे विश्लेषण को भी वो बड़े दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं, मतलब बोरियत नहीं होती।
तो चलिए अब किताब में गोता लगाते हैं, सदरलैंड का मेन पॉइंट क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं?
उनका सबसे बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला तर्क ये है कि बेस्ट सेलर सिर्फ अच्छी कहानी या अच्छी राइटिंग का नतीजा नहीं है।
अच्छा, तो फिर
ये एक पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस का रिजल्ट है। बेस्ट सेलर बनते नहीं, वो एक तरह से बनाए जाते हैं।
बनाए जाते हैं, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब हम तो सोचते हैं लेखक ने कमाल की किताब लिखी और वो चल गई।
हाँ, यही आम धारणा है, लेकिन सदरलैंड इसी को तोड़ते हैं। वो दिखाते हैं कि इसमें बहुत कुछ लगता है, सही ऐतिहासिक पल, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, पब्लिशर की जबरदस्त मार्केटिंग,
लेखक की अपनी इमेज, उसका ब्रांड।
हाँ, उसका ब्रांड और उस वक्त का जो कल्चरल माहौल है वो सब। जब ये सारे पुर्जे सही जगह फिट होते हैं तब जाकर कोई किताब बेस्ट सेलर का तमगा हासिल करती है।
तो ये किताब एक तरह से हमें एक नया चश्मा देती है, बेस्ट सेलर को सिर्फ लिटरेरी क्वालिटी से नहीं बल्कि उसे एक सामाजिक, एक आर्थिक फिनोमिनन की तरह देखने का।
बिल्कुल, ये समझने का कि क्यों कोई खास किताब किसी खास वक्त पर लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती है, ये दरअसल लेखक, इंडस्ट्री और हम पाठक सबकी मिलीजुली कहानी है।
अच्छा, इस आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। किताब में एक जगह वो पूछते हैं बेस्ट सेलर आखिर है क्या चीज,
अध्याय वन।
हाँ,
और उनका जवाब थोड़ा हटके है। वो कहते हैं, सिर्फ ये मत गिनो कि कुल कितनी कॉपी बिकी,
तो फिर क्या देखें?
ये देखो कि कितनी तेजी से बिकी, रफ्तार। इसे वो कहते हैं वेलोसिटी, बिक्री की रफ्तार।
अरे वाह, वेलोसिटी, ये तो नया एंगल है। मतलब अगर कोई किताब रिलीज हुई और पहले ही हफ्ते में धड़ाधड़ बिक गई।
हाँ, दुकानों से गायब होने लगी, तो वो सिर्फ किताब नहीं रहती, वो एक इवेंट बन जाती है, घटना।
और इसी रफ्तार से वो बज पैदा होता है ना?
एग्जैक्टली, मीडिया में हल्ला, सोशल मीडिया पर बातें, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे तुमने पढ़ी वो नई वाली?
और फिर आती हैं वो बेस्ट सेलर लिस्ट, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स वाली।
हाँ, सदरलैंड कहते हैं कि ये लिस्ट सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखती हैं, ये खुद एक बहुत पावरफुल मार्केटिंग टूल बन जाती हैं।
मतलब लिस्ट में नाम आ गया
तो और ज्यादा लोग जानेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे, ये एक साइकिल बन जाता है जो किताब को और ऊपर ले जाता है।
लेकिन ये बेस्ट सेलर का जो पूरा आइडिया है, ये आया कहाँ से? हमेशा से था क्या ऐसा?
नहीं, सदरलैंड इतिहास में जाते हैं, अध्याय दो। वो बताते हैं कि इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, प्रिंटिंग प्रेस, फिर 18वीं-19वीं सदी में जब लिटरेसी बढ़ी, नॉवल पॉपुलर हुए।
अच्छा।
और वो सर वॉल्टर स्कॉट जैसे लेखकों का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि वो शायद पहले ऐसे लेखक थे जिनका नाम ही एक ब्रांड था।
मतलब लोग किताब इसलिए खरीदते थे कि वो स्कॉट ने लिखी है।
हाँ बिल्कुल, उनका नाम ही गारंटी था, वो जमाने के सुपरस्टार थे समझ लीजिए।
दिलचस्प। और अब अगर आज की बात करें, आज की बेस्ट सेलर मशीन की, जैसा सदलन कहते हैं, अध्याय 3।
हाँ, ये चैप्टर तो कमाल का है। ऐसा लगता है जैसे पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री का एक्सरे कर दिया हो। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है सब सामने आ जाता है।
कौन कौन है इसमें खिलाड़ी?
देखिए, सबसे पहले तो लेखक। अब लेखक सिर्फ लिखने वाला नहीं रहा, उसे पब्लिक फिगर बनना पड़ता है। इंटरव्यू देने पड़ते हैं, बुक टूर करने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर दिखना पड़ता है। मतलब लेखक खुद एक ब्रांड है।
सही।
फिर एजेंट का रोल आता है।
हाँ, एजेंट आजकल बहुत पावरफुल हो गए हैं। वो पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी डील्स करवाते हैं, लेखक को सही पब्लिशर तक पहुंचाना है, एडवांस तय करना, ये सब। और फिर सबसे बड़ा खिलाड़ी, प्रकाशक।
सदरलैंड प्रकाशक की तुलना वेंचर कैपिटलिस्ट से करते हैं, या यूं कहें कि कैसीनो चलाने वाले से।
कैसीनो? ऐसा क्यों?
क्योंकि वो कुछ गिनी चुनी किताबों पर बहुत बड़ा दाव लगाते हैं, जिन्हें वो सोचते हैं कि ये जैकपॉट साबित होंगी। उन पर लाखों करोड़ों का एडवांस, फिर मार्केटिंग पर भारी खर्च,
और उम्मीद ये कि अगर एक चल गई तो बाकी 10 का खाता पूरा कर देगी।
बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत रिस्की बिजनेस है, और इसी वजह से मार्केटिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
हाँ, आजकल तो किताब छपने से महीनों पहले ही माहौल बनना शुरू हो जाता है।
वही तो, कवर कैसा दिखेगा, रिलीज डेट क्या होगी, कौन रिव्यू करेगा, लेखक कहाँ कहाँ जाएगा, सब कुछ पहले से प्लान होता है, एकदम मिलिट्री ऑपरेशन की तरह।
लेकिन क्या सब कुछ इंडस्ट्री के हाथ में हुआ है, बाहर के लोगों का कोई रोल नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं है। सदरलैंड बाहरी ताकतों का भी जिक्र करते हैं, वो जिन्हें गेटकीपर्स या इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं।
जैसे कि?
सोचिए, किसी किताब को बुकर प्राइज मिल जाए या नोबेल।
हाँ, फिर तो वो रातों रात ग्लोबल सेंसेशन बन जाती है।
बेशक, भले ही वो कितनी भी मुश्किल साहित्य किताब क्यों ना हो। और अमेरिका में ओपरा विन्फ्रे का बुक क्लब।
ओ हाँ, ओपरा का तो कमाल ही था।
सदरलैंड बताते हैं कैसे ओपरा की एक सिफारिश किसी गुमनाम सी किताब को भी फौरन बेस्ट सेलर बना देती थी। ये दिखाता है कि कुछ लोगों या प्लेटफॉर्म्स में कितनी ताकत होती है राय बनाने की।
कमाल है। अच्छा, किताब में जॉनर फिक्शन की भी बात है, जैसे थ्रिलर, रोमांस वगैरह।
हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अहम हिस्सा है। सदरलैंड इन्हें इंडस्ट्री का इंजन रूम कहते हैं।
इंजन रूम? ये क्यों?
क्योंकि इन्हीं किताबों से पब्लिशिंग इंडस्ट्री का असल में पहिया घूमता है, पैसा यहीं से आता है ज्यादातर। सदरलैंड इसके लिए एक थ्योरी देते हैं, अनुमानित आनंद या प्रिडिक्टेबल प्लेजर।
प्रिडिक्टेबल प्लेजर मतलब?
मतलब ये कि जब आप जॉन ग्रिशम का नया थ्रिलर उठाते हैं या डैनियल स्टील का रोमांस, तो आपको मोटा मोटा अंदाजा होता है कि आपको क्या मिलने वाला है।
हाँ, एक तरह का फॉर्मूला होता है।
बिल्कुल, जानी पहचानी कहानी, जाने पहचाने इमोशंस, लेकिन एक एक्सपर्ट तरीके से लिखे हुए।
पाठक कुछ एकदम नया या चौंकाने वाला खोजने नहीं आते हैं,
वो उसी जाने पहचाने मजे के लिए आते हैं।
सही कहा।
और इसी वजह से ये किताबें लाखों में बिकती हैं, और इन्हीं की कमाई से पब्लिशर फिर थोड़ी एक्सपेरिमेंटल या साहित्यिक किताबों पर भी पैसा लगा पाते हैं।
तो ये एक तरह का बैलेंस बनाता है इंडस्ट्री में।
हाँ, और फिर बच्चों की किताबों का जिक्र भी जरूरी है, अध्याय 5, खासकर हैरी पॉटर का।
हैरी पॉटर, वो तो एक अलग ही कहानी है।
बिल्कुल, सदरलैंड बताते हैं कि हैरी पॉटर ने तो सारे नियम ही तोड़ दिए। बच्चों की किताब, लेकिन बड़े भी दीवाने। रिलीज पर आधी रात को दुकानों के बाहर लाइनें।
हाँ, याद है मुझे।
ये सिर्फ किताब नहीं रही, ये एक ग्लोबल मल्टीमीडिया एम्पायर बन गया। फिल्में, गेम्स, मर्चेंडाइज, सब कुछ।
ये दिखाता है कि कभी कभी कोई चीज सारे अंदाजों को, सारे सिस्टम्स को पार करके कुछ बहुत बड़ा बन जाती है।
सही कहा। और फिर किताब का एक हिस्सा थोड़ा उदास करने वाला है, लेकिन बहुत जरूरी, डेड बेस्ट सेलर्स।
डेड बेस्ट सेलर्स, ये क्या मतलब हुआ?
ये वो किताबें हैं जो अपने जमाने में जबरदस्त हिट थी।
अच्छा।
लाखों बिकी, खूब चर्चा हुई, शायद फिल्में भी बनी।
अच्छा।
लेकिन आज उन्हें कोई नहीं पढ़ता, शायद नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने।
हाँ।
वो या तो आउट ऑफ प्रिंट है या लाइब्रेरी में कहीं धूल खा रही है।
ओ, मतलब साहित्य का एक कब्रिस्तान है जहाँ ये मरी हुई बेस्ट सेलर पड़ी हैं।
हाँ, सदरलैंड यही करते हैं, और ये बात उनके मेन तर्क को और मजबूत करती है।
किस तर्क को?
कि बेस्ट सेलर होना उस वक्त की पॉपुलैरिटी, उस वक्त की जरूरत का पैमाना है। ये जरूरी नहीं कि वो किताब हमेशा के लिए महान या कालजयी साबित हो।
लोकप्रियता और साहित्यिक अमरता दो अलग चीजें हैं।
बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे लिए तो सबसे पहली और बड़ी बात यही है कि बेस्ट सेलर एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है, ये बस यूं ही नहीं हो जाता।
हाँ, इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री, एक पूरा सिस्टम काम करता है।
दूसरी बात, कला और कॉमर्स के बीच की वो खींचतान।
अच्छा साहित्य या बिकने वाला साहित्य?
हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है। सदरलैंड दिखाते हैं कि दोनों बेस्ट सेलर बन सकते हैं, पर रास्ते अलग अलग होते हैं।
तीसरा पॉइंट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, कि बेस्ट सेलर अपने समय का आईना होते हैं। वो उस जमाने की नब्ज पकड़ते हैं।
हाँ, समाज क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, किससे डरता है, वो सब उनमें झलकता है। जैसे भारत में शायद किसी समय आध्यात्मिक किताबें खूब बिकी, किसी समय सेल्फ हेल्प, वो उस दौर का मूड बताता है।
चौथी बात, टेक्नोलॉजी का असर। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर अमेज़न और ई बुक्स तक, हर नई टेक्नोलॉजी ने बेस्ट सेलर बनने का तरीका बदला है। आज तो कोई भी ऑनलाइन बेस्ट सेलर बन सकता है।
और पांचवा, जो डेड बेस्ट सेलर से जुड़ा है, पॉपुलैरिटी हमेशा नहीं टिकती। आज का सुपरस्टार कल गुमनाम हो सकता है।
सही कहा, लोकप्रिय होना और कालजयी होना वाकई अलग बातें हैं।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में दिमाग में रह जाती हैं, जैसे वो वेलोसिटी वाली बात।
हाँ, बेस्टसेलर की पहचान सिर्फ बिकने वाली प्रतियों की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी बिक्री की रफ्तार से होती है। यही रफ्तार सांस्कृतिक बज पैदा करती है, ये तो परिभाषा ही बदल देता है।
और पब्लिशर्स के बारे में वो लाइन, आधुनिक प्रकाशक किसी कसीनो की तरह काम करता है, जो कुछ चुनिंदा संभावित जैकपॉट किताबों पर भारी दांव लगाता है, जिनसे बाकी सभी नुकसानों की भरपाई हो सके, इंडस्ट्री की सच्चाई सामने लाती है
कि हमें क्यों बार बार वही थ्रिलर या रोमांस पढ़ना अच्छा लगता है। और डेड बेस्ट सेलर्स वाली बात,
ओ हाँ, साहित्य का कब्रिस्तान मृत बेस्ट सेलर से भरा पड़ा है। उनका हश्र साबित करता है कि बेस्ट सेलर का दर्जा समकालीन प्रासंगिकता का माप है, न कि कालातीत योग्यता का। ये तो सीधी चोट करती है।
और आखिर में वो एक विचार,
कौन सा?
बेस्ट सेलर जरूरी नहीं कि अपने समय की सबसे अच्छी किताब हो, लेकिन लगभग निश्चित रूप से ये अपने समय की सबसे ज्यादा जरूरत वाली किताब होती है।
वाह, ये बहुत गहरी बात है। मतलब शायद उस किताब ने उस वक्त की किसी जरूरत को पूरा किया।
अब सवाल ये है कि ये सारी बातें जानकर हमें क्या फायदा, एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?
देखिए, सबसे पहले तो एक पाठक के तौर पर हम ज्यादा समझदार उपभोक्ता, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बन सकते हैं।
कैसे?
अगली बार बुक स्टोर में जाएंगे तो बेस्ट सेलर देखकर सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि ये बेस्ट है, हम ये भी सोचेंगे कि अच्छा, इस पर मार्केटिंग का जोर है, शायद हम अपनी पसंद को लेकर थोड़ा और स्वतंत्र हो जाएं।
हाँ, और शायद अपनी पसंद को बेहतर समझें। अगर मुझे जॉनरा फिक्शन पसंद है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, और शायद कभी कभी बेस्ट सेलर लिस्ट से हटकर भी कुछ ट्राई करने का मन करे।
बिल्कुल, और जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए तो ये आंखें खोलने वाली किताब है।
हाँ, उन्हें पता चलता है कि सिर्फ अच्छा लिखना ही काफी नहीं, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एजेंट क्यों जरूरी है, ब्रांडिंग का क्या मतलब है।
ये थोड़ा डरा सकता है, लेकिन ये असलियत है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है।
और ये बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, मार्केटिंग या बिजनेस वाले लोग भी इसे सीख सकते हैं।
हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को ब्लॉकबस्टर बनाने के सिद्धांत, हाइप बनाना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, ये सब यहाँ दिखता है।
और कल्चरल ट्रेंड्स को समझना तो हर बिजनेस के लिए जरूरी है।
बिल्कुल।
मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ा टेक अवे वो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट था, रफ्तार का महत्व, और हाँ, डेड बेस्ट सेलर्स का आइडिया, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
और मुझे लगता है सबसे जरूरी सीख ये है कि बेस्ट सेलर एक कॉम्प्लेक्स चीज है, इसे आसानी से अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। ये कला, व्यापार, समाज, इतिहास, सबका मिला जुला रूप है। ये किताब हमें चीजों को थोड़ा और गहराई से देखने का नजरिया देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।